अध्याय संख्या 15 पठन शिक्षण। पठन भाषा शिक्षण का एक प्रमुख अंग है। पठन का भाषा शिक्षण में इतना अधिक महत्व है कि प्रारंभ की कक्षाओं में पठन पर ही विशेष बल दिया जाता है, और यदि कोई छात्र ठीक से पढ़ लेता है तो यह समझ लिया जाता है कि उसका भाषा ज्ञान उस छात्र की अपेक्षा श्रेष्ठ है जो लिखित सामग्री को पढ़ नहीं पाता। पठन के महत्व के कारण ही पढ़ना शब्द साधारण बोलचाल में शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और हम पूछ बैठते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। एक प्रसिद्ध श्लोक में पिता जब पुत्र से कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्, तो उस समय पिता का मंतव्य पट से केवल व्याकरण को बिना अर्थ समझे बाँच लेने से नहीं है, वरन उसका अर्थ समझकर अध्ययन करने से है। पाठनारंभ योग्यता। पठन की शिक्षा प्रारंभ करने से पहले यह देखना आवश्यक हो जाता है कि बालक इस योग्य हो गया है या नहीं कि उसे पठन शिक्षा दी जा सके। माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत वैकल्पिक रूप में प्रारंभ होती है। कक्षा 6 में सामान्यतः बालक 11-12 वर्ष की आयु वाले होते हैं। इस आयु में बालकों एवं बालिकाओं का शारीरिक विकास इतना हो जाता है कि वे विविध ध्वनियों का उच्चारण कर सकें। प्रारंभ में यह आवश्यक होता है कि बालक के ध्वनि यंत्रों का इतना विकास अवश्य हो जाए जिससे कि वह प्रयत्न करने पर विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण कर सकें। पठन के समय बालक को तालु, जिह्वा, ओष्ठ, कंठ, दांत आदि का उचित रूप से उपयोग करना पड़ता है। उसे अपनी आँख, कान एवं नाक पर भी उचित नियंत्रण रखना पड़ता है। यदि बालक का शारीरिक विकास इतना हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह पठनारंभ के लिए तैयार है। पठनारंभ योग्यता के लिए केवल शारीरिक विकास को देखना ही पर्याप्त नहीं है, वरन यह भी जानना आवश्यक है कि बालक जिस परिवार से आ रहा है उस परिवार का शैक्षिक वातावरण कैसा है। यदि माँ बाप एवं अन्य पारिवारिक सदस्य सुशिक्षित हैं तो बालक घर पर बहुत सी बातें सीख जाता है। 5वीं कक्षा तक बालक मातृभाषा का अध्ययन किए रहता है। वह नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, तालाब आदि के नामों एवं रूपों से परिचित रहता है। उसे घर, परिवार, गांव, मोहल्ला, विद्यालय, प्रकृति आदि की सामान्य वस्तुओं से परिचय रहता है, अतः उसकी पठन शिक्षा सरलता से आरंभ की जा सकती है। पठनारंभ की दृष्टि से शब्दों का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बालक मातृभाषा में अनेक तत्सम एवं तद्भव शब्दों से परिचित हो जाते हैं। सामाजिक जीवन एवं शिष्टाचार संबंधी बातों को भी जानते हैं। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, प्रार्थना, नम्रता आदि में परिचित रहते हैं। पठनारंभ की दृष्टि से आकृति ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। वर्णों में भेद करना आकृति भेद की योग्यता पर निर्भर है। बहुत से छात्र व, ब, म, भ, स, सा, ग, म, घ, ध आदि को ठीक से इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। पठनारंभ के पूर्व कुछ देशों में आकृति भेद का ज्ञान बढ़ाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। मोंटेसरी शिक्षण विधि एवं किंडरगार्टन पद्धति में भी आकृतियों का की पहचान एवं उनमें भेद करने पर बल दिया जाता है। पठनारंभ की दृष्टि से रगों की पहचान, आकार भेद यथा छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा आदि का भी ज्ञान आवश्यक है। कक्षा 1 से 2 के बालकों के लिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं, किंतु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के समक्ष ये कठिनाइयाँ नहीं आती। ध्वनि की उच्चता एवं मंदता का ज्ञान भी पठनारंभ के लिए आवश्यक है। किसी बालक में उपयुक्त शारीरिक एवं मानसिक क्षमता है या नहीं, इसका पता विभिन्न परीक्षणों द्वारा लगाया जाता है। पठनारंभ के लिए बालक तैयार हैं या नहीं, इसके लिए पठनारंभ तैयारी की जाँच के लिए परीक्षण है। इन परीक्षणों द्वारा उन बातों की परीक्षा ली जाती है जिनसे पठनारंभ योग्यता का पता चलता है। अमेरिका में इस प्रकार के अनेक परीक्षण हैं। हिंदी में पठनारंभ योग्यता की जांच के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा परीक्षणों का निर्माण किया जा रहा है। संस्कृत शिक्षण यदि प्रारंभिक विद्यालयों से प्रारंभ किया जाएगा तो इन परीक्षणों से लाभ उठाया जाएगा, अन्यथा उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संस्कृत पाठशालाओं में यदि प्रारंभ में ही छात्रों को पाठन शिक्षा दी जाए तो वहाँ पर छात्रों की पठनारंभ योग्यता की परीक्षा ली जा सकती है। पठन शिक्षा से पूर्व, संस्कृत में पठन शिक्षा से पूर्व बालकों के हृदय में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। पठन की दृष्टि से छात्रों की रुचि का विशेष महत्व है। यदि बालक किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति में रुचि लेता है तो उनके विषय में यह अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अनुराग एवं रुचि के आधार पर बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाता है वह अधिक स्थायी होता है। जब बालक यह समझ लेते हैं कि संस्कृत के अध्ययन के बिना वे भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं हो सकते तो संस्कृत के अध्ययन से के वे प्रेरित होते हैं। आज के युग में केवल श्रवण से कार्य नहीं चल सकता। मुद्रण के आविष्कार ने पठन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यदि छात्रों की रुचि पठन की ओर नहीं होगी तो पठन शिक्षा निष्फल हो जाएगी। अतः अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे पठन शिक्षा से पूर्व पठन में छात्रों की रुचि जागृत करें। इसके लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ पोस्टर एवं चार्ट में कुछ चित्र बनाकर उनमें संस्कृत भाषा में कुछ लिख दिया जाए, अथवा किसी घटना को चित्र में प्रदर्शित करके उसका वर्णन नीचे संस्कृत में कर दिया जाए। छात्रों के मन में चित्र की बातों को जानने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे संस्कृत पढ़ने को उत्सुक होंगे। सूचना पट पर संस्कृत में सूचनाएं चिपका दें। दीवारों पर संस्कृत की सूक्तियों को लिखकर टांग दें। संस्कृत में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मंगाई जाएं। महत्वपूर्ण समाचार संस्कृत में सुनाए जाएं। वार्षिकोत्सवों के अवसर पर संस्कृत के वार्तालाप या लघु नाटक अभिनीत किए जाएं। छात्रों को रुचिकर कहानियां संस्कृत में पढ़ाई सुनाई जानी चाहिए। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे छात्रों की रुचि पठन में जागृत की जा सकती है। पठन शिक्षा का महत्व। आजकल मानव जीवन बहुत व्यस्त होता जा रहा है। बातचीत करके विचारों के आदान प्रदान का अवकाश कम मिल पाता है। अतः विचारों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। लिपिबद्ध विचारों को अन्य व्यक्ति पढ़कर ही ग्रहण कर सकते हैं। अतः पठन विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन है। पठन योग्यता पर ही अन्य विषयों का ज्ञान निर्भर है। पठन भाषागत कौशल है, किंतु अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का आधार है। यदि कोई छात्र ठीक से पढ़कर पठित वस्तु का अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता तो वह इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, मीमांसा, न्याय आदि का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेगा। पठन के द्वारा ही हम महर्षि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि के संपर्क में आ जाते हैं। छात्रों का मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पठन पर बहुत कुछ निर्भर है। विश्व के किसी कोने में उचित ज्ञान को हम पाठन द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। पठन द्वारा ही हम किसी काल में हुए ऋषियों एवं साहित्यकारों के विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पठन योग्यता के विकास से भाषा के अन्य कौशलों का भी विकास होता है। पठन काल में दक्ष छात्र लिखने, बोलने एवं समझने की कला में निपुणता प्राप्त कर लेता है। आजकल छात्रों विद्यालयों में पठन शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह खेद का विषय है। अध्यापक यह समझ लेते हैं कि छात्र को यदि वर्णमाला का ज्ञान हो गया तो वह ठीक ढंग से पढ़ भी लेगा। ऐसा समझना भ्रमात्मक है। पठन की योग्यता उत्पन्न करने के लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। पठन शिक्षण की विधियाँ। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी पठन शिक्षण में निम्नलिखित 7 विधियों का उल्लेख करते हैं। प्रथम, देखो और कहो विधि। द्वितीय, अक्षर बोध विधि। तृतीय, समय साम ध्वनि साम्य विधि। चतुर्थ, अनुध्वनि विधि। पंचम, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। षष्ठ, संवेत पाठ विधि। सप्तम, संगीत विधि। पहली विधि में शब्द परिचय द्वारा पठन शिक्षण होता है। चित्र में या श्याम पट पर शब्द लिख दिया जाता है और छात्र उस शब्द को देखते और कहते हैं। दूसरी विधि प्रचलित है। इसमें अक्षरों का बोध कराकर शब्दों का निर्माण सिखाया जाता है। तीसरी विधि है ध्वनि साम्य विधि में समान उच्चारण वाले शब्द यथा कर्म धर्म आदि का एक साथ सिखाए जाते हैं। चौथी विधि एक प्रकार से सुनो और कहो विधि है। शिक्षण शब्द का उच्चारण करता है और छात्र एक उसका अनुकरण करते हैं। पांचवी विधि नवीन विधि है, किंतु लिंगवा फोन की सुविधा हमारे विद्यालयों में प्राप्त नहीं। व्यय साध्य होने के कारण इसका अधिक प्रयोग होना कठिन है। छठी विधि में पूरे पाठ को अध्यापक आदर्श रूप में पढ़ाता है और छात्र एक साथ अनुकरण वाचन करते हैं। श्लोकों के पठन में यह विधि काम में लाई जा सकती है। सातवीं विधि मॉन्टेसरी विधि है, वस्तुओं एवं चित्रों के आगे कार्डों पर उनके नाम लिखे रहते हैं। छात्र कार्ड के नाम की और चित्र की संगति स्थापित करता है। उपर्युक्त सातों विधियों को देखने में से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुतः पठन शिक्षण की सात विधियां केवल गिनती गिनने के लिए हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मूल रूप से पठन शिक्षण की तीन विधियां हैं। वे तीनों विधियां निम्नलिखित हैं। प्रथम वर्णमाला पद्धति, द्वितीय शब्द शिक्षण पद्धति, तृतीय वाक्य शिक्षण पद्धति। वर्णमाला पद्धति में सर्वप्रथम छात्रों को अक्षरों से परिचित कराया जाता है। छात्रों को अ ई उ री लि ए ओ ए और स्वरों तथा क ख ग घ आदि व्यंजनों को सिखाया दिया जाता है। मात्राएं भी बता दी जाती हैं और छात्रों को संयुक्ताक्षरों को का ज्ञान भी करा दिया जाता है। उसके बाद अक्षरों के मेल से शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। बाद में वाक्य का ज्ञान भी करा दिया जाता है। वर्णमाला पद्धति की पर्याप्त आलोचना की गई है। मनोविज्ञान के पंडितों का कथन है कि वर्ण भाषा की इकाई नहीं है। वर्ण स्वयं में निरर्थक होते हैं, अतः छात्रों को रुचि अक्षर सीखने में नहीं होती है। इसलिए अंग्रेजी सिखाने में अब इस विधि को नितांत अनुपयुक्त करार दे दिया गया है। भारत में अभी भी यह पद्धति प्रचलित है। इस पद्धति के समर्थकों का तर्क है कि देवनागरी लिपि एवं संस्कृत की वर्णमाला पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। इनमें वर्ण और ध्वनि एक ही हैं, अतः कोई भी वर्ण निरर्थक नहीं है। कम से कम उसका यह अर्थ तो है ही कि वर्ण का नाम ध्वनि का प्रतीक है। जब क कहा जाता है तो क प्रतीक और इस प्रतीक का नाम क तथा ध्वनि क समान ही हैं। अंग्रेजी में यह बात नहीं है। उसमें सी प्रतीक का नाम सी है और उच्चारण क है। संस्कृत में वर्णों का क्रम भी उच्चारण स्थान के अनुसार सजाया गया है। अतः कुछ विद्वानों का मत है कि संस्कृत सिखाने में वर्णमाला पद्धति ही अधिक श्रेष्ठकर है। इसमें छात्रों का समय भी अधिक नष्ट नहीं होता। दूसरी पद्धति है शिक्षण शब्द शिक्षण पद्धति। इसमें वर्णों के स्थान पर सर्वप्रथम यह शब्द से परिचय कराया जाता है। शिशु सर्वप्रथम शब्द का ही उच्चारण करता है। वह अपनी तोतली बोली में भी पापा, नाना, मामा आदि शब्दों का उच्चारण करता है। वाच्य भी बाद में वह बोलता है, अक्षर भी बाद में सीखता है। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम शब्दों की शिक्षा देनी चाहिए। आचार्य चतुर्वेदी द्वारा वर्णित देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि तथा मैडम मॉन्टेसरी द्वारा प्रवर्तित संगति विधि वस्तुतः शब्द शिक्षण की विधियाँ ही हैं। तीसरी विधि है वाक्य शिक्षण विधि। यह पद्धति सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक समझ पड़ती है, क्योंकि भाषा की प्रारंभिक इकाई वाक्य है, ना कि शब्द या अक्षर। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि बालक सर्वप्रथम अपने मुख से शब्दों का उच्चारण करता है, वे यह भूल जाते हैं कि उसका शब्द भी वाक्य का ही है, प्रतिनिधि होकर आता है। जब बालक कहता है मामा, तब उसका तात्पर्य होता है मामा है या मामा कहाँ हैं या मामा आओ आदि। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में आजकल संरचना विधि को लोग अपना रहे हैं। इस विधि में भी दोष हैं। छात्र प्रायः अभ्यास की हुई परिस्थितियों को ही समझ पाते हैं। अन्य परिस्थितियों में व्याकरण या अनुवाद पद्धति के लोग बाजी मार ले जाते हैं। फिर भी यह पद्धति बालकों को अधिक रुचिकर प्रतीत होती है। संवेद पाठ विधि या भाषा शिक्षण यंत्र विधि इसी वाक्य शिक्षण विधि के प्रकारांतर हैं। उपर्युक्त विधियों को देखने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तीनों ही विधियां अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। कुशल शिक्षक यथावसर इन तीन विधियों का सहारा लेता है। एक में हम अक्षर से प्रारंभ करते हैं और दूसरे शब्दों की सीढ़ी को पार करते हुए वाक्य तक पहुंचते हैं, तो दूसरी में हम वाक्यों से प्रारंभ करके शब्दों की सीढ़ी को पार करके अक्षरों तक पहुंचते हैं। शब्दों का महत्व दोनों ही विधियों में बीच का है, अतः शब्द शिक्षण विधि को हम दोनों अन्य विधियों को जोड़ने वाली विधि कह सकते हैं। यह विधि पुल का काम करती है। इस विधि में हम यथा समय दोनों अन्य विधियों का उपयोग कर सकते हैं। पठन के प्रकार। पढ़ने वालों की संख्या की दृष्टि से पठन के दो प्रकार होते हैं। प्रथम व्यक्तिगत पठन, द्वितीय कक्षा द्वारा पठन। प्रथम व्यक्तिगत पठन। व्यक्तिगत पठन में एक ही छात्र गद्यांश का पठन करता है। व्यक्तिगत पठन द्वारा छात्र अर्थ को ग्रहण करके अपनी योग्यता अनुसार अध्ययन में प्रगति करता है। प्रत्येक छात्र की अपनी पृथक क्षमता होती है। बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति आदि की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, अतः पठन व्यक्तिगत होगा तभी ठीक होगा। अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है और चाहता है कि छात्रों में पठन की कुशलता उत्पन्न हो, तो वह कक्षा में भी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। द्वितीय कक्षा द्वारा पठन। कभी कभी किसी कक्षा में कुछ छात्र सामान्य स्तर से नीचे होते हैं। ऐसे छात्र कक्षा में खड़े होकर पढ़ने से लज्जा का अनुभव करते हैं। यदि ये छात्र अन्य छात्रों के साथ पढ़ें तो धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ने लगेंगे। ऐसे छात्रों की दृष्टि से सामूहिक पठन या कक्षा द्वारा पठन अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के पठन में संपूर्ण कक्षा उसी गद्यांश या पद्यांश का एक साथ पठन करती है। कक्षा के सामूहिक पठन का अपना आनंद है। किसी श्लोक को जब कक्षा के पूरे छात्र पढ़ने लगते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। मौन रूप से तो संपूर्ण कक्षा पठन करती ही है, जोर जोर से पढ़ने में भी सामूहिक पठन का महत्व है। संस्कृत भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व है। संपूर्ण कक्षा द्वारा किसी गद्य खंड या पद्य खंड को पढ़ाने में समय की बचत होती है और मंद गति वाले छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। पठन में स्वर की अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन के दो प्रकार हैं। प्रथम सस्वर पठन, द्वितीय मौन पठन। प्रथम सस्वर पठन। जब तक बालक मौन पठन की प्रक्रिया से परिचित नहीं हो जाता, तब तक सस्वर पठन का विशेष महत्व है। सस्वर पठन को व्यक्त पठन या मुखर पठन भी कहा जाता है। वस्तुतः इसे व्यक्त पठन कहना अधिक अच्छा है, क्योंकि आधुनिक शब्दावली में सस्वर पठन का ही प्रायः प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर भी सस्वर शब्द ही रखा गया है। सस्वर पठन संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर विशेष रूप से उपयोगी है। हम यह पहले ही कह आए हैं कि भाषा शिक्षण का एक प्रमुख प्रयोजन बोलने की कला का विकास करना है। इस दृष्टि से सस्वर पठन का विशेष महत्व है। सस्वर पाठ द्वारा बालक मौखिक अभिव्यक्ति की कला सीखते हैं। उनमें संस्कृत बोलने का अभ्यास दृढ़ होता है। वे निडर होकर कोई बात कह सकते हैं। सभा के समक्ष बोलने का अभ्यास सस्वर पठन द्वारा ही होता है। सस्वर पठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रथम, बालक शुद्ध उच्चारण कर सकें। द्वितीय, वे ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचित हो सकें। तृतीय, भावानुरूप स्वर की उच्चता या मंदता का वे अभ्यास कर सकें। चतुर्थ, वे पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। पंचम, यथावसर वाणी में ओज प्रसाद एवं माधुर्य ला सकें। षष्ठ, विराम स्थलों का ध्यान रख सकें। सप्तम, अर्थ की दृष्टि से विशिष्ट शब्द समूहों का ध्यान रख सकें। बालकों को सस्वर पठन का अभ्यास कराने के लिए अध्यापक को उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए आदर्श पाठ कराना चाहिए। अध्यापक की आदर्श पाठ कराते समय उच्चारण के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके उच्चारण का अनुकरण छात्र करेंगे। छात्र जब सस्वर पठन करें तो उनकी अशुद्धियों को ध्यान रखना चाहिए और पढ़ लेने के बाद उन अशुद्धियों का संशोधन कर देना चाहिए। कक्षा में सबसे पहले अच्छे पाठकों से सस्वर पठन कराना चाहिए, जिससे अन्य बालक उनका अनुकरण कर सकें। उत्तम सस्वर पठन के लिए उच्चारणाभ्यास भी परमावश्यक है। जिस समय बालक सस्वर पठन कर रहा हो, उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह खड़ा होकर पुस्तक को बाएं हाथ में लिए हो और पुस्तक नेत्रों से लगभग 1 फुट की दूरी पर हो। खड़े होने के ढंग पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिस समय एक बालक पढ़ रहा हो, उस समय अन्य बालकों को निर्देश दिया जाए कि वे अपनी पुस्तकों में पढ़े जा रहे अंश को देखते रहें। कभी कभी सामान्यतः शिक्षक यह धारणा बना लेते हैं कि पठन पर बहुत अधिक कार्य आजकल किया गया है और अंग्रेजी के पंडितों ने ही इस पर कार्य किया है। संस्कृत में पठन के गुण दोषों पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह धारणा मिथ्या है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने पठन कला पर विस्तार से विचार किया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में बताया गया है कि पठन को किस प्रकार आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है। उसी में पठन के दोषों का उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य शिक्षण में कहा गया है, शंकितं भीतमुद्घुष्टं अव्यक्तं मनुनासिकं काक्स्वरं मूर्धिन्गतं तथा स्थानविवर्जितं विस्वरं विदुषं चैव विश्लिष्टं विसमाहतं व्याकुलं तालुहीनं च पाठदोषाश्च चतुर्दश। अर्थात पठन के निम्नलिखित 14 दोष होते हैं। प्रथम, पठन के समय शंकित होना। द्वितीय, भयभीत होना। तृतीय, चिल्लाकर पढ़ना। चतुर्थ, स्पष्ट ना पढ़ना। पंचम, नाक से पढ़ना। षष्ठ, कौवे की तरह कर्ण कटु स्वर में पढ़ना। सप्तम, मूर्धा से पढ़ना। अष्टम, उचित स्थान से उच्चारण ना करना। नवम, स्वर रहित पठन। दसम, नीरस ढंग से पढ़ना। एकादश, मिलाकर स्पष्ट ना पढ़ना। द्वादश, विषम बलाघात करना। त्रयोदश, व्याकुलता पूर्वक पढ़ना। चतुर्दश, तालुहीन की भांति पढ़ना। अन्य स्थलों पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, गीती शीघ्री सिरह कंपी यथा लिखित पाठ कहा अनर्थ ज्ञो अल्प कंठस्थ सड़ेते पाठका धमः। अर्थात निम्नलिखित 6 प्रकार के पाठक अधम कोटि के माने जाते हैं। प्रथम, गा जाकर पढ़ने वाला। द्वितीय, अधिक शीघ्रता से पढ़ने वाला। तृतीय, पढ़ते समय सिर को हिलाने वाला। चतुर्थ, चुपचाप पढ़ने वाला। पंचम, अर्थ समझे बिना पढ़ने वाला। षष्ठ, जिसका कंठ साफ ना हो या दबे स्वर में पढ़ने वाला। या केवल शिक्षा में ही पठन के गुणों पर भी विचार किया गया है, उसमें बताया गया है, माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छे वस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च सड़ेते पाठकः गुणः। अर्थात अच्छे पठन के निम्नलिखित 6 गुण हैं। प्रथम, मधुरता। द्वितीय, अक्षरों का स्पष्टोच्चारण। तृतीय, पदों का उचित विभाजन। चतुर्थ, सुंदर और शुद्ध स्वर में के साथ उच्चारण। पंचम, धैर्य। षष्ठ, उचित लय के अनुसार पढ़ना। द्वितीय, मौन पाठन। जब पढ़ने का कुछ अभ्यास हो जाए तो छात्रों को मौन पठन के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि मौन पठन हमारे लिए अधिक उपयोगी है। मुद्रण के आविष्कार से अब तक अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। मुद्रित सामग्री प्रचुर मात्रा में बढ़ती जा रही है। इन सब को पढ़कर इनका सार ग्रहण करना होता है। इस दृष्टि से मौन पठन ही अधिक व्यावहारिक है। समाज में हम प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय सस्वर पठन नहीं कर सकते। इससे दूसरे नागरिकों के कार्यों में बाधा पड़ सकती है। अतः मौन पठन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मौन पठन ही सबसे अधिक प्रचलित भी है, क्योंकि जीवन में इसी से अधिक काम पड़ता है। सस्वर पठन में अधिक समय लगता है। नेत्रों का एक शब्द या शब्द समूह से दूसरे शब्द समूह तक जाना बहुत शीघ्रता से होता है, किंतु नेत्र संचालन की गति के अनुरूप ही वाणी नहीं चलती, अतः स्वर निकालने में समय अधिक लगता है। मौन पठन में स्वर निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अतः मौन पठन में समय की बचत होती है। मौन पठन में शक्ति भी कम लगती है। सस्वर पठन में नेत्र, मस्तिष्क एवं वाणी तीनों का योग रहता है, जबकि मौन पठन में केवल नेत्र एवं मस्तिष्क का योग रहता है। भाव को हृदयंगम करने की दृष्टि से भी मौन पठन का अधिक महत्व है। सस्वर पठन में उच्चारण एवं ध्वनि पर अधिक ध्यान रहता है, इसलिए पठित अंश अच्छी तरह से आत्मसात नहीं हो पाता। मौन पठन से भावों को ग्रहण करने में अत्यधिक सफलता मिलती है। मुख्य अंग का समझना एवं उसे याद करना भी मौन पठन द्वारा सुविधाजनक होता है। संस्कृत या अन्य भाषा ही नहीं, वरन सभी विषयों में अध्ययन में मौन पठन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम, मौन पठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रथम, पठन गति बढ़ाना एवं उसमें क्षिप्रता लाना। द्वितीय, पठित अंश के बोध ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना। तृतीय, बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना। चतुर्थ, मुख्य तथ्यों के चयन करके एवं केंद्रीय तथ्य को स्मरण रखने की योग्यता का विकास करना। छात्रों में मौन पठन का अभ्यास डालने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकें आकर्षक हों, तथ्य सरल एवं छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हों, तथा छात्रों के शब्द भंडार का ज्ञान रखा जाए। मौन पठन का अभ्यास, मौन पठन का अभ्यास डालते समय छात्रों को निर्देश हो कि वे गुनगुनाएं नहीं, पूर्ण शांति से पाठ को मन में ही पढ़ें। मौन पठन प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रेरणात्मक प्रश्न या समस्या रख दें तो अधिक अच्छा हो। काठिन्य निवारण पहले ही हो जाना चाहिए। जिस समय छात्र मौन पाठ कर रहे हों उस समय अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए। पढ़ने के लिए पर्याप्त समय देने के पश्चात कुछ प्रश्न करने चाहिए। प्रसंगवश किसी घटना या कथा का वर्णन करना हो तो मौन पठन के पूर्व ही कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। शब्द भंडार की वृद्धि मौन पठन का एक आवश्यक अंग है। छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि, पहले ही कहा जा चुका है कि मौन पठन द्वारा छात्रों में समवेत पठन की आदत उत्पन्न की जाती है और साथ ही साथ बोध ग्रहण की क्षमता का विकास किया जाता है। बोध ग्रहण तभी संभव होता है जब छात्रों के शब्द भंडार का विकास होता रहे। इसके लिए उपयुक्त विधियों द्वारा शब्दों का तात्पर्य बताना चाहिए, शब्दों की व्युत्पत्ति की ओर भी संकेत किया जाए। संस्कृत भाषा की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें अनेकानेक शब्दों के गढ़ने की शक्ति विद्यमान है, जबकि अन्य भाषाओं में यह शक्ति कम होती है। शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की ओर भी संकेत करना चाहिए। छात्रों को इस बात का ज्ञान कराना चाहिए कि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द अनेक हैं, किंतु संस्कृत में प्रत्येक शब्द केवल पदार्थ का ही बोधक न होकर गुण का भी बोधक है। अंग्रेजी या अन्य भाषाएं इस दृष्टि से बड़ी अक्षम हैं। अंग्रेजी में जब वाटर कहा जाता है तो उससे केवल जल पदार्थ का बोध होता है, अर्थात अंग्रेजी के शब्द केवल पदार्थों के प्रतिनिधि होकर आते हैं। इसीलिए केवल अंग्रेजी के विद्वान या केवल अंग्रेजी के माध्यम से भाषा विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्वानों की समझ में यह बात सरलता से नहीं आती है। वे समूचे भाषा शास्त्र को इसी दृष्टि से देखते हैं। संस्कृत में एक एक शब्द पदार्थ का प्रतिनिधि होता ही है, साथ में वह उस पदार्थ के किसी विशेष गुण का भी प्रतिनिधि होता है। अर्थात उदाहरणार्थ वाटर के लिए संस्कृत में हम पयः, पानीयम या उदकम कहते हैं। पयः का अर्थ है पोषण करने वाला, पानीयम का अर्थ है तृप्त करने वाला, उदकम का अर्थ है अंदर से बाहर आया हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। अर्थ शब्द केवल उस पदार्थ का द्योतक है जिसका प्रतीक बनकर वह शब्द आया है। संस्कृत में पृथ्वी के लिए कुछ शब्द ये हैं, पृथ्वी, धरा, भूमि, उर्वी, गुर्वी, क्षमा। पृथ्वी का अर्थ है फैली हुई, धरा का अर्थ है धारण करने वाली, भूमि का अर्थ है अनेका, अनेक पदार्थों की जननी, उर्वी का अर्थ है विशाल, गुर्वी का अर्थ है भारी और क्षमा का अर्थ है सहन करने वाली। संस्कृत में जब कोई लेखक या कवि किसी शब्द का प्रयोग करता है तो वह केवल पदार्थ के वाचक के रूप में ही नहीं, वरन पदार्थ एवं विचार दोनों के प्रतिनिधि के रूप में। अंग्रेजी में केवल नकारात्मक उपसर्गों डिस, अन, इम, इन, मिस में योग से बने हुए शब्दों अथवा लॉजी के योग से बने हुए शब्दों अथवा कुछ इसी प्रकार के अन्य शब्दों की ओर ध्यान जा सकता है, किंतु यहाँ पर ऐसे शब्दों से तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो मूल शब्दों की ओर ही संकेत किया जा रहा है। कोश का प्रयोग। शब्द भंडार की दृष्टि से कोश का विशेष महत्व है। छात्रों को कोश देखने की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। यदि वे कोश देखने की आदत डाल लेंगे तो अनेकानेक शब्दों से उनका परिचय बढ़ेगा। संस्कृत का शब्द कोश भी काव्य की भांति रुचिकर है। एक एक शब्द की अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति की गई है, एक शब्द में अनेक अर्थ हैं। वाणी के प्रकाशन का जिस बारीकी से संस्कृत के पंडितों ने विश्लेषण किया है वह सराहनीय है। संस्कृत में अमरकोश बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। अमरकोश में एक एक शब्द का विचार किया गया है, यथा अमरा निर्जरा देवः, अर्थात देव अमर हैं, किंतु अमरता व्यर्थ है यदि वृद्धता से छुटकारा ना मिले, अतः निर्जरा कहकर अमरता के गुण का विकास किया गया है। अमरा निर्जरा देवः अमरकोश का प्रारंभिक वाक्य है। पाठ्य पुस्तक। पठन में पाठ्य पुस्तक का अपना स्थान है, अतः पाठ्य पुस्तक पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। संस्कृत की उत्तम पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं। प्रथम, भारतीय वाङ्मय तथा संस्कृत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करते हुए राष्ट्रीयता का विकास करना। द्वितीय, छात्रों को संस्कृत भाषा का सामान्य व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, उनके संस्कृत शब्द भंडार की वृद्धि करना तथा विभिन्न उपयोगी शब्दों, धातु रूपों और प्रत्ययों का बोध कराना। तृतीय, उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बालकों को निम्नलिखित अभ्यास कराना। अ, शुद्ध उच्चारण तथा पठन का अभ्यास। आ, मौखिक तथा लिखित भाव प्रकाशन का अभ्यास। ई, सरल संस्कृत में लिखित पाठ्य सामग्री का शुद्ध उच्चारण पूर्वक भावों को यथोचित रूप से प्रकट करते हुए विधि पूर्वक पढ़ने का अभ्यास। ई, संस्कृत श्लोकों का सुंदर तथा आकर्षक ढंग से लयपूर्वक भाव प्रकाशित करते हुए विधि पूर्वक पाठ करने का अभ्यास। उ, अपने अनुभवों को सरल तथा स्पष्ट भाषा में मौखिक तथा लिखित रूप में व्यक्त करने का अभ्यास। चतुर्थ, शिक्षण क्रम में श्रव्य, दृश्य प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रणाली जैसे मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सहायता लेना। पठन की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों का चयन भी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुस्तकों के अभाव में छात्र पठन में रुचि नहीं लेते। पाठ्य पुस्तकों को तैयार करते समय उसमें जिन पाठों का समावेश किया जाए वे कक्षा के स्तर के ही होने चाहिए। संक्षेप में पाठ्य पुस्तक की रचना के सिद्धांतों का नीचे उल्लेख किया जा रहा है। प्रथम, वर्ण विषय छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार रखा जाए। द्वितीय, भाषा ज्ञान के क्रमिक विकास की दृष्टि से पाठ्यों का क्रम सरल से कठिन की ओर रखा जाए। तृतीय, बालक के वातावरण से संबंधित पाठ होने चाहिए। चतुर्थ, पाठों से जीवन के विविध क्षेत्रों का परिचय मिले। पंचम, पाठ बालकों की रचनात्मक शक्ति का विकास करने की दृष्टि से हों। केवल पाठ्य पुस्तकों से ही पठन की योग्यता का विकास नहीं होता, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सहायक पुस्तकों का भी चयन करना चाहिए। वे सहायक पुस्तकें यथासंभव सरल, रोचक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इनके अध्ययन से छात्रों का ज्ञान व्यापक एवं व्यावहारिक होता है। संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के विषय में प्रायः कहा जाता है कि ये सदा पुराना राग ही अलापती हैं एवं इनमें नवीन अन्वेषणों के प्रति कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। अतः पाठ्य पुस्तकों की रचना के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे नवीन दृष्टिकोण उपेक्षित ना हो। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। एक, पुस्तक की भाषा सरल एवं सुबोध हो। दो, पाठों में विविधता हो, कहानी, नाटक, काव्य, गद्य, इतिवृत्त आदि सभी का समावेश हो। तीन, पुस्तकों की शैली छात्रों की बौद्धिक योग्यता के अनुकूल हो। चार, पाठों में नैतिक उपदेश हों और साथ में क्रियात्मक शिक्षा वाले पाठ भी हों। पाँच, उनमें चरित्र निर्माण, व्यवहार, राष्ट्रप्रेम, वीरता, धैर्य, त्याग, विश्व बंधुत्व तथा अनुशासन आदि उच्च भावों को प्रबुद्ध और विकसित करने की पर्याप्त सामग्री हो। छः, उनमें ईश वंदना, सरल संस्कृत नीति, महापुरुष आदर्श बालक, दृश्य वर्णन, यात्रा, ऋतु वर्णन, राष्ट्रीय तथा सामाजिक पर्व, उपदेशात्मक सरल कहानी, सरल नीति श्लोक, संवाद, खेलकूद आदि पर आधारित पाठों का समावेश हो। सात, उनमें परिवेश परिचय, नगर, राज्य तथा राष्ट्र के ज्ञान की ओर क्रमिक संकेत हो। आठ, कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियों की भी चर्चा हो जिससे संस्कृत का छात्र कूप मंडूक न रहे। नौ, पाठों के अंत में वार्तालाप, लिखित अभ्यास, व्याकरण अनुवाद तथा शब्द प्रयोग के प्रश्न हों। दस, पाठों में निर्धारित व्याकरण के प्रयोगों का समावेश किया जाए जिसके आधार पर व्याकरण शिक्षण सरल और रोचक हो। 11. इसके अतिरिक्त बालकों को संस्कृत साहित्य से परिचय कराने के लिए संस्कृत के सरल अंश चुने जाएं, पर ये उस स्तर पर तक ना रखे जाएं कि जब तक बालक उन्हें समझने योग्य ना हो। 12. हिंदी भाषा में प्रयुक्त तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से किया जाए, साथ ही छात्रों के निकट परिवेश और उनके दैनिक जीवन से वे संबद्ध हों। 13. पुस्तक आकर्षक और प्रभावोत्पादक चित्रों से सुसज्जित होनी चाहिए। 14. पुस्तक में शरीर के अंग, संबंधीजन, वर्तन, फल, शाक, वृक्ष, पुष्प, विभिन्न रंग, खाद्य वस्तुओं, लेखन तथा पाठ्य सामग्री, पशु पक्षी, वनस्पति, ऋतु, विद्यालय आदि विषयों पर आधारित शब्दावली का विशेष रूप से चयन किया जाए। 15. पाठ कठिनता से के क्रम से रखे जाएं, उनमें नवीन शब्दों की बहुलता नहीं होनी चाहिए। 16. पाठ्य पुस्तकों के विषयों से संबद्ध विषयों पर सरल एवं स्पष्ट भाषा में सहायक पुस्तकें भी हों। 17. पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय की आदत डालने के लिए अभ्यासार्थ प्रश्न भी हों। 18. पाठ्य पुस्तकों से केवल भाषा ज्ञान ही ना बढ़े वरन सामान्य ज्ञान की भी वृद्धि हो। 19. पुस्तक का कलेवर बहुत बड़ा ना हो। 20. पुस्तक का मुद्रण अच्छा हो, कागज भी ठीक हो, जिल्द अच्छी हो, मुख्य पृष्ठ उत्तम एवं आकर्षक हो। 21. पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की योग्यता उच्च स्तर की हो। 22. पुस्तक का मूल्य अधिक ना हो। यदि उपयुक्त पुस्तकों का निर्माण किया जाए और उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों एवं सहायक पुस्तकों का चयन किया जाए तो छात्रों की पठन रुचि का विकास होगा और उनका भाषा ज्ञान बढ़ेगा।